الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں ایک کے بعد ایک اور نیکی کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ وہ ہمارے اس وقت میں برکت دے اور ہماری زندگی اسی طرح سے ایک کے بعد ایک عمل کو کرتے ہوئے گزر جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ دعا سکھائی تھی جب انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی، اگر میں نے لیلۃ القدر کو پا لیا تو کیا مانگوں؟ تو آپ نے جو دعا سکھائی تھی ذرا دہرائیے گا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں اس دعا کا تو بہت ہی خوبصورت ہے. اللہم اے اللہ، انک بے شک تو، عفو مٹانے والا ہے، لفظی معنی تو یہ ہوگا درگزر کرنے والا ہے، یہ اس کا زیادہ اچھا ترجمہ ہے. اور ایک عام معروف ترجمہ کیا ہے، تو معاف کرتے والا ہے. یہ جو لفظ معاف ہے نا اردو میں، معافی، وہ بھی عفوی ہے. کبھی لفظ معافی کے لیے میم عین فا نہ لکھ دیجئے گا، یہ عفو ہے، عین فا و. اور ایک حدیث میں داڑھی کے بالوں کے لیے بھی یہی لفظ آیا کہ داڑھی کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. ٹھیک ہے، تو میں ابھی اس کا صرف آپ کو لفظی وضاحت کیوں دے رہی ہوں تاکہ آپ اس لفظ کو سمجھ سکیں. اور وہ کیا ہے، اللہم اے اللہ، انکا بے شک تو، عفو معاف کرنے والا ہے، تو حب تو پسند کرتا ہے یعنی محبت کرتا ہے، ہا بابا حب دانے کو کہتے ہیں، اسی سے لفظ حب ہے، محبت کا بیج دل میں ڈلتا ہے تبھی محبت کے اگلے مراحل طے ہوتے ہیں. تو حب العفو تو پسند کرتا ہے معافی کو، پس کیا کر، فاعفو عنی پس مجھ کو بھی معاف کر دے. اور رشتے جڑ نہیں سکتے جب تک معافیاں دیں اور معافیاں لی نہ جائیں. فارگیو فارگیٹ کا لفظ تو بہت دفعہ آپ نے بولا اور سنا ہوگا، لیکن اب جس طریقے سے ایک آئینہ بن کر یہ سامنے آ گیا ہم سب اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ہم نے جب رشتے جوڑنے کی کوشش کی تو یہ سمجھ آ گیا کہ رشتے جڑتے ہیں جب ہم دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں اور دوسروں کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمیں معاف کر دیں. زندگی میں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ کو کچھ نہ کہے اور آپ اس کو کچھ نہ کہیں. تو لہٰذا بہت سارے لوگ اللہ سے تو معافیاں مانگتے ہیں، خود معاف نہیں کرتے. یہ دعا جو اللہ کے نبی نے تاک راتوں میں مانگی جانے والی دعا کے طور پر عائشہ صدیقہ جو آپ کی بڑی ہی پیاری بیوی تھی ان کو سکھائی، حالانکہ عائشہ اولاد کی نعمت سے بھی محروم تھی، عائشہ کا گھر بھی بہت بڑا نہیں تھا اور ظاہر ہے باقی چیزیں تو اس کے بعد ہی ہوتی ہیں، لیکن سب کچھ چھوڑ کر عائشہ کو یہ کیوں کہا کہ عائشہ اگر تجھے تاک رات یعنی لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو تو یہ دعا مانگ لے. کیونکہ آج ذرا سے اس دعا کی حکمت سمجھیے گا، آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ، مجھے امید ہے اللہ سے، اور اللہ آپ کو ہمیشہ ہی علم کے ساتھ خوش رکھے. آپ دیکھیے کہ ہم نے سورۃ شورا میں خاص طور پہ اور پورے قرآن میں بیسیوں پر یہ بات پڑھی جس کا خلاصہ کیا تھا کہ وما اصابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے. ہم ایک ایک چیز کو لیتے ہیں، عائشہ صدیقہ ہی کی مثال سامنے رکھتے ہیں. اللہ کے نبی کی بیوی تھی، بڑی ہی چھوٹی عمر میں آپ کی زوجیت میں آ گئیں، ابھی تو ان کے نام اعمال میں چیزیں شاید درج بھی نہ ہونے لگی ہوں گی کہ اللہ نے اس کو ایک نبی کی بیوی بنا دیا. اور اچھی صحبت کا اثر ہوتا ہے، ہم سب اپنے شوہروں اور شوہر بیویوں سے ضرور متاثر ہوتے ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نام اعمال تو بہت صاف تھا، لیکن چونکہ وہ امت کی ماں تھی ان کو بنیاد بنا کر ہمیں یہ بات سکھا دی گئی کہ دیکھو تم چاہتے ہو کہ بہت کچھ مانگو، لیکن کبھی وہ عذر تو دیکھو، وہ راستے کی رکاوٹ تو دیکھو جو تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بن کر ملتی ہے. اور وہ کیا ہے، تمہارے گناہ. انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، یہ حدیث کا خلاصہ. انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے مشکلات، مصائب، بیماریوں، تکلیفوں، دکھوں کا شکار کیا جاتا ہے. اور اس کا اپوزٹ بھی پتہ چلتا ہے کہ صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑنا، दूसरों से मिल के रहना, किनशिप कह लीजिए इसको, इससे उम्र में भी बरकत होती है, रिस्क में भी बरकत होती है। तो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। असल में अगर मैं अपनी ठेठ सी जुबान में इसका तर्जमा कर दूं तो ये बनेगा कि अल्लाह, आज तक मैं जिस नेमत से महरूम हूं, मैं इकरार करती हूं कि ये मेरे ही किसी गुनाह की सजा है, और आज तक मेरी जो दुआएं तेरी बारगाह में कबूल नहीं हो सकी तो उसकी वजह भी यही है कि मैंने अभी उस तरह तुझसे मांगा ही नहीं है। याद रखिए, एक जुमला अपने लिए दिल पे लिख के जाए। हम इन तीन दिनों में दुआओं पे बहुत बात करेंगे क्योंकि ये दुआओं को मांगने के दिन है। आप कहते हैं मैंने मांगा मुझे मिला ही नहीं, क्या आप ज्यादती नहीं कर रहे ये जुमला बोलकर? क्या अल्लाह ताला की शान रबूबियत और उसके अलवहाब होने और अलमौती होने के ऊपर आप एक उंगली नहीं उठा रहे? नहीं समझ आई बात, कोशिश करते हैं। इसको ऐसे समझिए कि आपके भाई बहन कोई भी लगा ले, और अगर मैरिड हैं आप तो शौहर, माँ बाप, कोई रिश्ता दुनिया का, और सबको छोड़ दीजिए, रिश्तों को एक साइड पे करें जरा, दोस्त। आपको पता है कि आपकी दोस्त के पास एक चीज मौजूद है जिसकी आपको जरूरत है, और आप इसी दोस्ती के मान में उससे मांगती हैं कि वो चीज मुझे दीजिए बिलफर्ज वो ना दे, आप क्या सोचेंगी? अच्छा कि बुरा? बुरा सोचेंगी। पहली बात है कि उसके पास है कि नहीं, ये तो आपको नहीं पता था, ये तो एक अलग स्टोरी है। आपको यकीन है कि आपकी दोस्त के पास वो चीज मौजूद है फिर नहीं देती तो आप कहेंगे कंजूस, आप कहेंगे बखील, आप कहेंगे स्टिंजी, और आप कहेंगे थोड़े दिल वाली, और आपका दिल उससे खट्टा होगा, बदगुमानियां पैदा होंगी। अब इस बात को जरा सा दिल पे हाथ रख के सुनिए। आपने मांगा अल्लाह से, और आपको पता कि अल्लाह के पास है कि नहीं? है ना, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, सब कुछ तो उसका है जो आसमान और जमीन में। तो दूसरी बात भी साबित हो गई कि हमें पता है कि अल्लाह के पास है। अब अगले मरहले पे आ जाइए, मांगा तो मिला ही नहीं, दोस्त के बारे में तो 5-6 गलत फहमियां आपको आ गई, सही फहमी भी हो सकती है, उसकी को मजबूरी भी हो सकती है, जाहिर बेचारी बड़ी अमीर लगती हो लेकिन हो सकता है उसके पास $10 भी ना हो, मुमकिन है, लेकिन अल्लाह के पास तो सब कुछ था, आपको फिर भी नहीं मिला। तो याद रखिए, ये दुआ आपकी दुआ के अकीदे को दुरुस्त करेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब भी दुआ मांगता है तो उसको तीन में से एक चीज जरूर मिलती है, या तो वही चीज मिल जाती है जो मांगी होती है, या उससे कोई बेहतर चीज अल्लाह दे देता है और उसको नहीं पता चल रहा कि ये उस दुआ के कबूल ना होने के बदले में मिला, और तीसरी बात है कि ना वो मिला ना उससे अच्छा मिला, बल्कि आखरत में उससे बहुत प्यारे दर्जे मिलेंगे। फरमाए पहले दर्जे की जो दुआ है ना, ये आम दर्जे की है, माजरत के साथ जिसको आप और मैं कहते हैं मेरी बात पूरी हो गई, इधर मैंने बात मुंह से निकाली वो पूरी हो गई, वैसे बिजली नहीं थी, आप बैठे हाय गर्मी गर्मी, अल्लाह बिजली आ जाए, आ गई, आप एकदम क्या कहते हैं, कुछ और मांग लिया होता ना, शुक्रबन है, और कुछ मांग लीजिए इससे पहले कि वो कबूलियत का वक्त खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो ये अल्लाह के यहाँ बड़े हल्के दर्जे की दुआएं होती हैं जो मांगी जाएं और मिल जाएं। ये तो ऐसे जैसे आपके बच्चे ने जिद की और आपने उसको टॉफी दे दी, ले लो जाओ, अब जो मर्जी हो फिर तुम्हारे साथ, अब मांगी है तो भुगतो, ठीक है। आगे चलिए, दूसरे पे चलते हैं, वो नहीं मिली उससे अच्छी मिल गई, अब आपको तो पता नहीं, बच्चे ने मांगी टॉफी, आपने टॉफी तो ना दी, खजूर दे दी, अब वो रोए चिल्लाए चीखे तड़पे, लेकिन खजूर तो टॉफी से हर सूरत बेहतर है। ये बात बच्चे को भी नहीं समझ आएगी, ये बात उसको समझ आएगी जब वो 40-30-40 साल का हो चुका होगा, अगर उसके दांत अभी भी अच्छे होंगे, वो कहेगा मेरे वो दूध के दांत ही बड़े पक्के हैं क्योंकि मेरी माँ ने मुझे टॉफियां नहीं खाने दी, क्लियर है। उस दिन आपको कितना माँ बाप पे प्यार आएगा, अल्लाह का शुक्र है उन्होंने हमें फिजी ड्रिंक नहीं दिए, उन्होंने हमें आर्टिफिशियल चीजें खाने को ना दी, और हमने एक हेल्दी लाइफ स्पैन गुजार दिया माशाल्लाह। चलिए तीसरी चीज, ना आपने टॉफी दी और ना आपने खजूर दी। टॉफी क्या थी? बच्चे का बचपन था, और खजूर क्या थी, उसकी जवानी की ताकत थी। आप उन्हीं पैसों को जमा करते गए करते गए करते गए, और आपने उसके लिए कोई ऐसी चीज खरीद ली जो उसके बुढ़ापे तक उसके साथ चलेगी। सोने की डली ले ली, जमीन का टुकड़ा ले लिया, गाड़ी ले ली, कुछ भी। अब वो बच्चा, उसको वो हकीकत कब समझ आएगी, आपने ना टॉफी दी ना खजूर दी, बल्कि आपने उसके मुस्तकबिल के लिए एक चीज संभाल के रख ली, जब वो वाकई कमजोर होगा और उसको पता कि आज मैं कुछ कर नहीं सकता, अब तो है कुछ नहीं। ओ अच्छा, अम्मा अब्बा ने वो चीज लेके रखी थी, उन्होंने कहा था जब बहुत बूढ़े हो जाओ, बीमार हो जाओ, कुछ ना हो तो जरा ये अलमारी खोलना। खोल के देखा तो उसमें कुछ मिला। बस अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो दुआएं फौरी कबूल होती हैं वो आम दर्जे की हैं, जो दुआएं इंसान की थोड़ी देर से कबूल हों या उससे बेहतर हों ये दरमियाने दर्जे की हैं, और कुछ दुआएं सारी जिंदगी कबूल नहीं होती। कल परसों किसी ने कितना प्यारा सवाल किया, मैं बाद में भी उसको इंजॉय करती रही, आप ही में से कोई होंगी, मेरे पास साईं कहने लगी आखिर दुआ कब तक मांगनी चाहिए। मुराद ये था कि और कब तक, और वो पूछने लगी, कोई यंग ही थी, कोई बहुत बड़ी उम्र की औरत नहीं थी, तो मैं उसका शक्ल देख रही थी, तो मैं देख रही थी अभी थक गई, अभी घबरा गई। आपको था कि हदीस में आता है कि क्यामत के दिन जब इंसान की वो दुआएं जो सारी जिंदगी मांगता रहा और उसकी कबूल ना हुई, जब उसके बदले में वहां की मुश्किलें टलेंगी, वहां के दुख दूर होंगे, तो बंदा ख्वाहिश करेगा कि अल्लाह दुनिया में जो तूने मेरी दुआएं कबूल कर भी ली थी ना, वो भी ना करता और आज मुझे मिलता। तो दुआओं का बेहतरीन दर्जा क्या है कि अल्लाह ताला बंदे की आखिरत की मुश्किलों को टालेगा। एक मिसाल में पूरी बात समझ आ जाएगी। बंदा मांगता है गाड़ी 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 दे दे, गाड़ी दे दे, गाड़ी दे दे, अल्लाह गाड़ी नहीं देता। पहली सूरत है दे दी, और एक ही हफ्ते के बाद एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह रहम करे, गाड़ी भी गई टांगे भी गई। ये पहली सूरत थी, क्या ये गाड़ी का मिलना रहमत था? कम से कम टांगे तो मौजूद रहती, चलता तो सही, लेकिन उसको मिल गई ठीक है। उसने ये कहा ही नहीं था कि रब्बा ना आती ना फिर दुनिया हसना, कि अल्लाह गाड़ी देना अच्छी करके देना, बेहतरीन सूरत में देना। खैर दूसरी सूरत है गाड़ी नहीं दी अल्लाह ने, लेकिन उस हादसे से बचा लिया जिसमें टांगे कट जानी थी, तो ये बेहतर हो गई ना। और तीसरी सूरत है कि अल्लाह आखरत में उसको जन्नत में उड़ने वाले घोड़े दे दे, कौन सा बेहतर है? तीसरा बेहतर है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह आपने आज दुआ के नाते से एक बात तो समझ ली, कभी शिकवा ना कीजिएगा आज के बाद, कभी गिला ना कीजिए। मुझे लगता है मैं एक साल का पूरा दुआ का कोर्स कराऊं ना, तो जितनी आज हमारे इस कल्चर में दुआ के नाम पे मिसकॉन्सेप्शन और खुराफात, मतलब हमें बड़े बड़ों को नहीं पता कि दुआ क्या होती है, दुआ कर दें दुआ कर दें दुआ कर दें, दुआ करा लें दुआ करा लें, नेवर। और चंद अहादीस पढ़ते सुनते हैं तो उसके ऊपर भी गौर करके बहुत स्टबन भी हो जाते हैं। जिसने फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ी वो जन्नत में जाएगा, ठीक है बिल्कुल जाएगा। और ये दुआ जिस पे है इस पे आ जाइए कि जिसने ताक रात में ये दुआ मांग ली उसकी कबूल होगी, और जिसने ये रातों को खड़े होकर क्याम किया, मन कामा ईमान व इख्तसाबन गुफिर लहु मा तकद्दम मिन ज़म्बी, जिसने ईमान और इख्तसाब के साथ रात को क्याम किया अल्लाह उसके पिछले गुनाह माफ कर देता है। दुआएं तो हदीसें तो मौजूद है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये सारी बातें मशरूत है, कंडीशनल है, शराइत के बगैर दुआएं कबूल नहीं होती। ठीक है, उसको पीछे डाल दीजिए। अब आइए जरा इस दुआ की एक बड़ी खूबसूरत चीज। पहली बात यह कि आज रात ताक रात है और दिल कहता है कि आज की रात जागना है, अल्लाह जानता क्यों। हर रात ही खूबसूरत है, लेकिन जिस रात की कदर कर ली जाए वो लैलतुल कदर है। तो हम आज ये दुआ जो सीख रहे हैं इस कोर्स के नाते से, इसका नाम फाफ अदनी इसी दुआ के आखिरी हिस्से से रखा है कि पस है मेरे रब मुझे माफ कर दे। हकीकत यह कि सबसे ज्यादा इंसान को जिस चीज की तलब और तड़प होनी चाहिए वो माफी है। फाफ अन्नी बस मुझे माफ कर दे, असल में एक तलब है तड़प है कि अल्लाह अभी तक जो मेरी दुआएं नहीं कबूल हो रही ये उसके रास्ते की रुकावट दूर कर। पंजाबी में कहते हैं डक्का लग गया,
आप सिंक में पानी डाल रहे हैं, सब्जी धो रहे हैं, चावल धो रहे हैं, पानी आगे ही नहीं जा रहा, क्या वो क्लॉग आ गया? लिख लीजिए, गुनाहों के क्लॉग्स जब रास्ते में आ जाते हैं तो दुआओं का पानी नहीं गुजरता। इन क्लॉग्स को दूर करने के लिए हम तड़प के कहते हैं फाफुअन्नी फाफुअन्नी फाफुअन्नी। ये जो फा है ना, इसको हटा दूंगी तो बात ही नहीं रहेगी। फा क्या है? फौरन। अरबी जबान में दो लफ्ज होते हैं, एक होता है थुम तराखी और एक होता है फा। फसौ फतालमून एक लफ्ज आप कुरान में पढ़ते हैं, सुम्मा सूरत बकरा में आप पढ़ चुके हैं, सुम्मा कसत कुलूबुकुम। सुम्मा क्या होता है? थोड़ी देर बाद। और फा क्या है? फौरन। ये जो फा फुअन्नी है ना, ये पिछले हिस्से के साथ जोड़कर देख लें, फौरन मुझे माफ कर दे, दरगुजर कर दे। यानी अल्लाह मुझे पता है मैं गुनाहगार हूं, लेकिन तू तो माफियों को पसंद करता है, बस तू मुझे माफ कर दे। यानी मेरा पिछला पिटारा ना खोल। मुझे इस फा में पता क्या लग रहा है? मेरा नाम अमल ना खोल, बंद कर दे। अल्लाह प्लीज प्लीज गो हेड गो। हम हर जगह से जल्दी गुजरना चाहते हैं ना। इमिग्रेशन में फंसे, हम कहते फौरन निकलो। कस्टम वाली लाइन में थे, वो कहते जाओ। जब भी वहां से गुजरूं तो मैं उस वक्त क्यामत को सोचती हूँ। अल्लाह क्यामत के दिन में नथिंग टू डिक्लेयर से गुजारना। कोई वहां कस्टमेबल माल ना हो और वहां कोई लंबे चौड़े खेल ना पड़े हों के हम बैठे हैं अपनी जायदाद दें और अपने सोने चांदी तुलवा रहे हैं और जमा तफरीकें हो रही हैं और अगले 500 साल पहले जन्नत में चले गए। अल्लाह इस तरह दुनिया से लेके जाना, मिस्कीनी की हालत में कि सब तेरे रस्तों में लग चुका हो। फाफुअन्नी, तो ये कोर्स फाफुअन्नी है। इसमें हम तीन चीजों को देखेंगे, लेकिन उससे पहले लफ्ज़ फाफू को समझिए। देखिए, पूरे कुरान में हमने बख्शिश का लफ्ज़ पढ़ा है, और ये गैन फारा से एक मारूफ लफ्ज़ क्या है? मगफरत। मगफरत की दुआएं, ये आज इस हिस्से के एंड पे हम करेंगे भी। लेकिन गफर का लफ्ज़ जो है ना अरबी जुबान में, कुरान में 234 टाइम इस्तेमाल हुआ है, 202 आयतों में। कहीं ना कहीं बख्शिश है, लेकिन ताक रात में मगफरत नहीं मांगेंगे आप। पहले मेरे सवाल पे गौर कीजिए, फिर मैं जवाब दूंगी कि यहां मगफरत की बजाय अफ क्यों कहा गया। देखिए, ये दुआ से भी तो हो सकती थी ना, जिसको आप देखे अल्लाहुम्मा इन्नका गफ्फारुन, अल्लाह तू बख्शने वाला, तो खिब्बुल मगफिरा, तो बख्शिश को पसंद करता है, तो एक फिर ली मुझे माफ कर दे। हो सकता था कि नहीं? बिल्कुल ठीक था, हो सकता है, लेकिन गफरों की जगह फाफू की आया। ये है वो नुक्ता, जिसको आज समझ गया वो तो शायद शुक्र का सजदा करेगा कि अल्लाह तूने मुझे यहां लाके बिठा दिया। ये बात सुने बगैर दुनिया से चली जाती तो आज की ताक रात पता नहीं क्या क्या मांग रही होती और पता भी ना होता। तो फर्क नोट कीजिएगा। देखिए, मगफर मिगफर गफरा ढांपना होता है, टू कवर। मसलन ये मेरे सामने टेबल पे वाइट कवर डला हुआ है ना, बिलफर्स मेरा पेन खुला रह गया और इसके ऊपर इंक का निशान पड़ गया, हो जाता है ना। अब मुझे पता चला कि ओहो, मुझे कोई मिलने आ रहा है। अब इतना वक्त तो कोई नहीं है मेरे पास कि मैं पकड़ कर तो इसको उतारूं, बदलूं, धोऊं, इसको साफ कराऊं, ठंडा इसको फिर करूं और उसके बाद फिर मैं इसको लेके चलूं। तो मैं जल्दी से क्या करूंगी? फौरन ये देखिएगा, इसका ही अगर कवर सिरा ना तो मैं इसको फोल्ड कर दूंगी, यानी छुपा दूंगी, या उसके ऊपर कोई कॉपी रख दूंगी। करते हैं ना हम ऐसा? सब करते हैं, माने ना माने। हम किसी को आता देखो फौरन अपनी चीजें क्यों छुपा देते हैं? और कुछ नहीं तो आप लाइट क्यों बंद कर देंगे, चादर क्यों डालते हैं? नोट कीजिएगा, धब्बा मौजूद है, आपने उसको कवर कर दिया, ठीक है ना। मगफरत क्या होती है? धब्बे मौजूद हैं गुनाहों के, अल्लाह तो अपनी रहमत की चादर डाल दे, ये भी खूबसूरत है। लेकिन इससे ज्यादा खूबसूरत लफ्ज क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ्वुन तुहिब्बुल अफ्वा फाफू अन्नी। यहां लफ्ज अफ है। अफ क्या है? कॉपी पे बच्चे से कुछ गलती हो गई, एक है कि पेंसिल से पकड़कर उसको जल्दी जल्दी ऊपर लाइने लगा दी और ज्यादा नुमाया नहीं हो जाएगी, और दूसरा क्या है? अरेजर रबर लेकर उसको मिटा देना, बस ये है अफ। अफ क्या है? यानी अगर इसमें मगफरत का लफ्ज होता तो क्या होना था कि अल्लाह मेरे गुनाह तो मौजूद है, तू बस उसके ऊपर अपनी रहमत की चादर डाल दे ताकि दूसरों को ना नजर आए, मेरा नाम है वहां लोगों से छुप जाए। लेकिन जहां तक अफ का ताल्लुक है तो मुराद क्या है कि उसको गुनाह से दरगुजर करने के साथ साथ नाम आमाल से इसको मिटा भी दे, गोया कि मैंने वो गुनाह किया ही नहीं। समझ आई बात? कौन सा बेहतर लफ्ज है? अफ का बेहतर है, मिटा दीजिए अल्लाह, कहीं फिर ना कोई खोल दे। और क्यामत के दिन क्या कुछ होने वाला है, इस पे मेरे जहन से परतों के परत खुलते जा रहे हैं, लेकिन मैं ज्यादा जा नहीं सकती आगे क्योंकि आपको और बहुत कुछ देना। बस इतना समझ लीजिए कि अल्लाहुम्मा इन्नका फुवन तुहिब्बुल अफवा फाफु अन्नी। एक बंदे की इल्तजा है अपने रब के सामने, उसका रोना है, उसका अपने गुनाहों के बोझ से दबना है। सारी रात अगर आप बैठकर ये रो रो के दुआ भी मांगते रह गए, बेटे भी मांग लिए हैं आपने, बेटियां भी मांग ली हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपने अपने नामे अमाल को साफ करा लिया। हम सब चाहते हैं कि दाग छुपे नहीं, धुल जाएं। कुछ दाग फौरन धो लिए जाते हैं, कुछ को थोड़ी डिले करके धोया जाता है। फर्क क्या होता है? मसलन इंक लगी, फौरन उठाया आप में से किसी ने आकर कवर और जाके पानी में रखा, कच्ची पेंसिल होगी या कच्ची इंक होगी तो फौरन उतर जाएगा। सुस्ती कर दी या अभी हालात ही नहीं थे तो का क्लास के बाद धोएंगे, दाग पक्का होगा। तो फिर आप उसको क्या करेंगे? साबुन भी लगाएंगे फिर धुलेगा। और यहीं छोड़ के अगले दिन सुस्ती के मारे चले गए कि कल आके सफाई कर लेंगे, तो अब ना वो पानी से धुलेगा ना वो साबुन से धुलेगा, आपको उसको ब्लीच डालना पड़ेगा। और कभी कभी तो इतने पक्के धब्बे हो जाते हैं कि फिर आपको उसमें भट्टी पे पकाना भी पड़ता है। ये है मेरे आपके गुनाह। आप कहें अल्लाहुम्मा इन्नका फुव्वन तुहिब्बुल अफवा फाफु अन्नी। ए अल्लाह, मेरे तो इतने पक्के दाग हैं, बचपन से जवानी तक के गुनाह सोचें तो पसीने आएंगे। हाय मैं मर गई, हाय मेरी तो बचपन का भी कोई गुनाह याद आ रहा है, हाय मुझे तो अभी चढ़ती जवानी का गुनाह भी याद आ रहा है, और जवानी के गुनाह तो भूल ही नहीं रहे। तो इस एहसास से आप कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नका फुव्वन तुहिब्बुल अफवा फाफु अन्नी। इससे खूबसूरत दुआ कोई हो नहीं सकती थी जो एक शौहर अपनी बीवी को सिखाए, कहाँ वो शौहर नबी भी हो। तो आज रात अगर नसीब हो गई तो इस दुआ को मांगिएगा कि अल्लाह तू बस मेरे गुनाहों को दरगुजर कर दे, इसको मिटा दे, मेरे अंदर कुछ भी ना रहे। और ये भी याद रखिएगा कि अफ जो होता है ना, उसका ताल्लुक गुनाह से भी है, दरगुजर करने से भी है, और उसको मिटाने से भी है। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की कि इतनी गलतियां ना करो, रबड़ पेंसिल से पहले ही खत्म हो जाए, इतनी गलतियां ना करो। क्योंकि आप देखिए कि जो मर्जी कर लीजिए, गलती करने के बाद फिर आप देखेंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो असर रह ही जाता है। जरूरत है इस बात की कि इस दुआ को बेहतरीन तरीके से मांगा जाए। सवाल पैदा होता है आप कब से मांगे? मगरिब की अजान से लेकर रमजान का आखिरी सूरज ढलने तक इस कॉल को कसरत से पढ़ें। अल्लाहुम्मा इन्नका फुव्वुन तुहिब्बुल अफ्व फाफु अन्नी। मैं जब भी पढ़ रही हूँ ना, शऊर से पढ़ रही हूँ ताकि आप भी आमीन कह दें। एक लम्हे के लिए भी इसमें कमी ना करें, और इसको जितना भी ज्यादा पढ़ेंगे उससे आपको फायदा होगा, क्योंकि इसमें दरगुजर की बात है ना। इब्ने कय्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं कि जब तुम दुआ करो और तुम वक्त की कमी का शिकार हो और तुम्हारे दिल में जरूरियात की कसरत हो, हम सबका यही हाल होता है अक्सर, तो फिर अगर कसरत हो तो अपनी दुआ को ये बनाओ कि अल्लाह मुझसे दरगुजर कर दे। अल्लाहुम्मा इन्नका फुव्वुन, फरमाया अल्लाह ताला तुमसे जब दरगुजर करेंगे तो तुम्हें तुम्हारी जरूरियात बिन मांगे दे देंगे, और तुम्हारे पास वो चीजें खुद ब खुद आती जाएंगी जो तुम मांगने वाले थे। फिर आप देखिए लफ्ज अफ, अब इसकी परतें बहुत सारी हैं। उर्दू में एक लफ्ज सुनते हैं आफियत, वो भी यही है, मुआफी भी यही था और आफियत भी यही है। जब आप कहते हैं ना अल्लाहुम्मा इन्नका अफ्वुन, तो इसमें क्या क्या आएगा? मेरे बदन में आफियत, मेरे दीन में आफियत। और आप सुबह शाम के एक दुआ में एक दुआ मांगते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ्वा वल आफिया फिद दुनिया वल आखिरा, तो इसमें जिस्म की ताकत और बदन की चुस्ती और दीन की आफियत, यानी दीन और दुनिया सब कुछ आएगा। बदन में आफियत आएगी तो बीमारियां दूर हो जाएंगी, शिफा मिल जाएगी, और जब दीन में आफियत आएगी तो नेकी, भलाई और इबादत की तौफीक मिल जाएगी, और आखरत से मुतल्लिक हर अमल करने का मौका अल्लाह ताला आसान कर देगा। और दीन में अफ यह है कि दरगुजर माफी बख्शिश मिले, कि अल्लाह अलफुफ अल करीम और अल मन्नान की तरफ से नंबर एक गुनाह मिट जाए, दूसरी बात है गुनाहों से अल्लाह तजावुज कर दे और इस पर सजा ना दे। तीन मानी है। इसी तरह एक चौथा मानी लिखिए अफ का, मुझे पता है मुश्किल लग रहा है आपको लेकिन लिखे, फायदा होगा। इजाफा और कसरत। लुगत में अफ़ुन कहते हैं कसरत और इजाफे को। यसलूनका माज़ा युन्फिकून, कुलिल अफ़। अफ़ क्या था? बढ़ोतरी, एक्स्ट्रा। तो अफ़ के मानों में इजाफा और कसरत होता है। क्या जो चीज जरूरत से ज्यादा उसको खर्च कर दें, तो जब आप कहते हैं ना अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुवन, तो असल में आप अपने माल में भी इजाफा मांगते हैं। कभी ये सोच के दुआ मांगी थी आज तक? मांगी थी तो खुशकिस्मत है आप सब, और अगर नहीं मांगी थी तो माजरत के साथ पहाड़े पढ़ते हैं, हम कोई दुआएं नहीं मांगते। कितनी दफा पढ़ना है बाजी? खड़े होके पढ़ना है कि बैठ के पढ़ना है? एक पाँव पे खड़े होना है कि दो पे खड़ा होना है? मुंह किधर करना है? अल्लाह के बंदो अंदर झांको। तो लिहाजा इस सफ के अंदर कितना कुछ है, यानी वो चीज जो असल खर्च से ज्यादा हो, और इसकी ज्यादती क्या है अगर इसको देखे तो इसका मतलब क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। फ़ाफ़ु अन्नी का मतलब ये है कि अल्लाह जो मैं आपसे मांग रही हूँ या मांगना चाह रही हूँ वो भी दें, लेकिन उससे ज्यादा भी दे दें। ये है अफ़, मोर देन आई एक्सपेक्ट। उर्दू पंजाबी में बोलूँ, अल्लाह मेरे बर्तन से ज्यादा ही डाल दे। लेके तो एक किलो का बर्तन आई हूँ या एक लीटर का डोल लाई हूँ, लेकिन इसमें 5 लीटर डाल दे अपनी रहमत। यानी इतनी बेबसी है इस दुआ में। मैं कहती हूँ अगर आज अभी रात से पहले आप सिर्फ इतना हिस्सा ये दुआओं का शेयर कर देना क्लिप की सूरत में, तो हो सकता है आज रात कितनों को ये सब कुछ मिल जाए जो सिर्फ अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी पे। आप पूछेंगे कि ये मैं इतनी बारीकी में क्यों जा रही हूँ, पूछ सकते हैं आप। तो मैं आपको इसकी वजह बताती हूँ। मैं अपनी बात बताने लगी हूँ जो अच्छी नहीं है। आज से कई साल पहले से ये दुआ सुनी हुई है, मेरे भी जिन में ये आता था कि ये क्या मांगने वाली दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। इतनी ज़रूरतें छोड़ के हम एक ही चीज़ मांगे जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं। जैसे कि जैसे प्यास लगी हुई और पानी ना मांगो और किसी से कुछ और मांग लो, वो तो मग़फ़िरत चाहिए आखिरत में। आज मैंने इस पर इतना गौर किया, अल्लाह ने ये चीज़ें मेरे सामने खोल दी कि असल में ये सब कुछ है। लेकिन अल्लाह के नबी किसी को ताक रात, जिसकी एक रात कितनी लंबी चौड़ी है अभी आगे हम देखेंगे उसको, अगर ये कहेंगे तो क्या ये छोटी चीज होगी? तो फिर अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी।